नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश के प्रमुख युद्ध सामग्री कारखानों का दौरा किया और मिसाइलों एवं अन्य हथियारों के उत्पादन में भारी वृद्धि करने का आदेश दिया। देश के सरकारी मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। किम के ये आदेश देने से कुछ ही दिन पहले दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने वार्षिक सैन्य अभ्यास शुरू किए थे, जिन्हें उत्तर कोरिया अपने लिए खतरे के तौर पर देखता है। किम का देश में हथियारों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना इस बात की पृष्ठभूमि में भी अहम है कि अमेरिका के अधिकारियों को लगता है कि रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के साथ जारी उसके युद्ध के लिए रूस को और हथियार बेचने के संबंध में उत्तर कोरिया से हाल ही में बात की थी। हांगकांग के साथ प्रमुख लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को 2019 में व्यापक पैमाने पर हुए प्रदर्शन में उनकी भूमिका को लेकर सुनाई सजा का कुछ हिस्सा सोमवार को रद्द कर दिया गया। अब बंद हो चुके एप्पल डेली अखबार के संस्थापक जिमी इलाई, डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मार्टिन ली और बैरिस्टर मार्गरेट एनजी समेत 5 पूर्व लोकतंत्र समर्थक सांसदों को अवैध तरीके से सभा एकत्रित करने और उसमें भाग लेने का दोषी पाया गया था। लाई, ली चुक यान, ल्यूंग क्वोक होंग और काइड होको को 8 से 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। शहर के लोकतंत्र के जनक कहे जाने वाले मार्टिन ली, मार्गरेट और एल्बर्ट हो को प्रोबेशन के आधार पर जेल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिका के फ्लोरिडा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक विमान जो पूरी ऊंचाई पर उड़ रहा था वो अचानक से सीधे 20,000 फीट नीचे आ गया। विमान में मौजूद सभी यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। कई यात्रियों ने तो ऑक्सीजन मास्क भी बाहर निकाल लिए। सोशल मीडिया पर इस घटना के कुछ फोटो वायरल हो गए हैं। जानकारी मिली है कि फ्लाइट में अचानक से तकनीकी खराबी आ गई थी, प्रेशर को लेकर शिकायत थी, उस वजह से ही पायलट ने फैसला किया कि विमान को कम ऊंचाई पर लाया जाए और फिर लैंडिंग करवा दी जाए। अब पायलट ने ऐसा कर दिया, लेकिन क्योंकि सिर्फ 3 मिनट में ऊंचाई से सीधे 20,000 फीट नीचे आ गए, सभी यात्री खौफजदा हो गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमला हुआ है। इस हमले में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 4 चीनी नागरिकों और 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। ये घटना गवादर में हुई है। 7 वाहनों का काफिला चीनी इंजीनियरों को लेकर जा रहा था, इसी दौरान उसे घेर कर गोलीबारी शुरू हो जाती है और लगातार विस्फोट किया जाता है। इस हमले के बाद गवादर को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और शहर में किसी के भी जाने और निकलने पर रोक लगा दी गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी की सुसाइड ब्रिगेड ने चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। वहीं बंदरगाह को चारों ओर से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। जैसे ही हमला हुआ वहां पर रहने वाले आसपास के लोग सहम गए। करीब 2 घंटे तक गोलीबारी चली। नाइजर में विद्रोही सैनिकों को देश के अपदस्थ राष्ट्रपति को बहाल करने या सैन्य हस्तक्षेप का सामना करने के लिए तैयार रहने को लेकर दी गई अंतिम समय सीमा के बीच जाने के 1 सप्ताह बाद भी सैन्य शासन जुंटा ने इसे स्वीकार नहीं किया है। विश्लेषकों का कहना है कि कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि तख्ता पलट करने वाले नेताओं ने धमकी जारी करने वाले क्षेत्रीय गुट पर बढ़त हासिल कर ली है। पश्चिम अफ्रीकी गुट इकोवास ने नाइजर के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को अपदस्थ करने वाले विद्रोही सैनिकों को उन्हें रिहा करने और बहाल करने के लिए पिछले रविवार तक का समय दिया था और ऐसा नहीं करने पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर के एक प्रमुख मंदिर में शनिवार को तोड़फोड़ की गई। इसके सामने के गेट और पिछले दीवार पर भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक पोस्टर चिपका दिए गए। ये पोस्टर शनिवार तड़के लक्ष्मी नारायण मंदिर में लगाए गए। हालांकि सुबह पता चलने पर पोस्टर वहां से हटा दिए गए। मंदिर के अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि वो मंदिर के अपमान से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। सही में ये मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यात्रा कार्यक्रम में शामिल किया गया था, जब उन्होंने 2015 के वसंत में कनाडा का दौरा किया था। कुमार ने कहा कि मामले की सूचना रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस या RCMP की सरे टुकड़ी को दे दी गई है। मंदिर के CCTV कैमरे में नकाब पहने 2 व्यक्तियों की तस्वीरें कैद हुई हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की चिंताओं के कारण मंदिर पहले भी पुलिस के संपर्क में था, क्योंकि वो 20 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे अर्जेंटीना में अक्टूबर में होने वाले आम चुनाव के तहत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए एक प्राइमरी चुनाव में धुर दक्षिणपंथी नेता जेवियर मिल्ले ने रविवार को सबसे ज्यादा मत हासिल किए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशंसक मिले ने कहा है कि अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक को खत्म कर देना चाहिए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।